الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبي محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. بزرگ اور بھائیو، یہ دین جو ہمیں اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے، یہ آخری دین ہے. آخری دین کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت تک اللہ کی طرف سے کوئی نئی شریعت، کوئی نیا رسول، کوئی نئی کتاب، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اور اگر کوئی اس کا دعویٰ کرے گا تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہوگا، غلط ہوگا، یہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہو سکتا. احادیث میں بہت سے کذابین کا، جو اپنے نئے دین کا دعویٰ کریں گے، آنے کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی. کہ 30 سے زیادہ کذاب آئیں گے اور مختلف نوعیتوں سے اپنی باتیں پیش کر کے اپنے نئے دین کا چرچا لوگوں میں کرنا چاہیں گے، اور نئی چیزوں کو لوگ جلدی پسند کر لیتے ہیں. لیکن سرکار نے ہمیں جو بات بتائی ہے اس کی روشنی میں نئی کوئی بھی بات ہمیں منظور نہیں، اور نہ ہم ان کی یہ باتیں مان سکتے ہیں. ایک طرف تو دین کے اندر یہ حالات ہیں کہ طرح طرح کی باتیں کرنے والے اور جھوٹے اپنی غلط چیزوں کو خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں، اور علم کی کمی کی وجہ سے بہت بڑا طبقہ اس کی طرف چلا جاتا ہے. دل کے پکولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اور اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. ایک طرف تو یہ حال ہے، دوسری طرف عالم یہ ہے کہ سرکار نے جب سے دین کی دعوت دی، جب سے حزب مخالف اور مد مقابل دین کا رہا، بہت اطمینان سے اور سنجیدگی سے سنیں گے آپ میری بات. مکہ مکرمہ میں تو سرکار کے دشمن رہے کھلے، जिन्होंने रात और दिन कोशिश ये की कि मक्के की चार दीवारी से हुजूर की सदा और आप कहीं बाहर जाने ना पाए। ये मेहनतें तकरीबन 13 सालों तक रही। अगर इस दीन को मिटना होता तो उस जमाने में मिट जाता, क्योंकि जब सरकार दीन की दावत लेके चले तो आप अकेले थे और पूरा मक्का वहां के सरदारान सब एक तरफ। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ होते गए, कारवां बनता गया। इसके बीच में सरकार तशरीफ ले गए ताइफ के, शायद वहां सहारा दीन को मिल जाए तो वहां मरकज बनाकर दीन का काम करें। लेकिन सरकार को बताया गया कि ये लोग भी आपके काम के नहीं हैं, आप वहां से भी आए और दर्द भरी आपकी दुआ रही जिसको तारीख में नकल किया है। यहां से आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, इससे पहले बैतुल अकबती उला और बैतुल अकबती सानिया का अरबाब सियर ने तस्करा किया है। अब वो तफसीली चीज है, उसके लिए मदरसे में आइए। उसके बाद आप मदीना तशरीफ ले गए। मदीना मुनव्वरा में एक तो औस और खजरज वाले थे जिन्होंने वादा कर दिया कि हम सरकार की मदद करेंगे। सरकार ने पहले से जवान सहाबे किराम की एक जमात को भेजा था कि वो दीन के लिए राहें हमवार करें। इनमें हजरत मुसअब इब्ने उमैर रजी अल्लाह तआला को भी थे। जवानों को असल में दीनी मेहनत करके दीनी काम करने वालों की राह हमवार करना चाहिए, तो वो रुकावटें पैदा करने के चक्कर में है। फिर वहां जो है औस और खजरत तो साथ हुए, लेकिन एक नया तबका वहां वजूद में आया जिनको अंग्रेजी में हिपोक्रेट्स कहते हैं और अरबी में उनको मुनाफिक कहा। इनका सरतेल जो है वो अब्दुल्लाह इब्ने उबैय रहा, जिसको मदीनी की गद्दी नशीनी का शौक था और सरकार के आने पर ये उजड़ गई। पहले पहले इसको भी जरा गुस्सा भी रहा, जरा अपनी बात मनवाने का दाइया भी रहा, लेकिन गज़वे बद्र के बाद इसका ये टेम्पो जो है वो ठंडा हो गया कि यहां गाड़ी ज्यादा चलेगी नहीं। इसके बाद से ये जमात लगातार सरकार को तकलीफ देती रही। अगर कोई आकर आपको यूं कह दे कि भाई हम आपके मुखालिफ हैं, तो उसके साथ आदमी किसी तरह से भी निबट सकता है। लेकिन पसे पुष्ट कांग्रेसियों की तरह 50 सालों तक जैसे उनको जो है खंजर लगाते रहे और हमारे पुष्ट में खंजर भोंकते रहे, तो हम क्या माने इनको, दोस्त माने के दुश्मन माने। एक साहब ने पूछा था मसला कि ये किसको वोट दें, हम लोग दो जमाते हैं यहां। मैंने कहा कम नुकसान देने वाले को वोट दीजिए, नुकसान दोनों से है, कम जो नुकसान देता हो उसको वोट देते हैं। ये दोनों बला है, लेकिन कम दर्जे की बला को पसंद कीजिए। टाइफाइड के मुकाबले में मलेरिया ठीक है। ये 10 सालों तक सरकार के पीछे रहे और ये जमात बाद में भी रही, यहां तक के जो है तबका हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने तक हमको नजर आता है अब्दुल्लाह इब्ने सबा का। दीन के खिलाफ रेशा दवानियां हमेशा रही है और इकबाल ने कितनी अच्छी तर्जमानी की है, अगर ये शेर हमें समझ में आए। सदैव कार रहा है अगल से कायम रोज, सदैव कार रहा है अगल से कायम रोज, चरारे मुस्तफ़ावी से शरारे मूलाहवी। जहां जहां चरारे मुस्तफ़ावी जलते हैं वहां वहां मूलाहवी शरारे भी हमको नजर आते। जहां कोई हक वाला होगा वहां बातिल वाले जरूर होंगे। जब तन्हा थे सरकार अपनी जगह तीन रहा, मदीने गए दीन मजबूत तर हुआ, हालांकि मुखालिफीन की तादाद रात दिन बढ़ती चली गई, आज करोड़ों की तादाद में मुसलमान है, लिहाजा ये दीन के खत्म होने का तो सवाल पैदा नहीं होता। कल मैंने एक मिसाल दी, हमारे हजरत मुफ्ती महमूदुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत अच्छी अच्छी मिसालें देते थे और बात समझाते थे। एक साहब ने सवाल किया कि मौलाना ये कब तक तकलीफें और ये हालात जो हमारे ऊपर हैं चारों तरफ से, कुछ हालात तो ऐसे हैं कि आ बैल मुझे मार हम लोगों ने ईजाद किए हैं, और कुछ हालात जो है बेरुनी हैं जो हम पर मंडरा रहे हैं, कुछ हालात को हमने दावत दे रखी है और कुछ वो हालात जो इन करतूतों के नतीजे में हम पर मुसल्लत किए गए हैं। ये सब इजमाली खाका है। अब जाहिरी बात है कि हालात का होना तय है कि हालात हैं, हमारे पर पूरी दुनिया जानती है, अखबार भी यही कहते हैं हालात। और एक बात समझ लें आप, ये मजहब इस्लाम की सच्चाई की सबसे बड़ी दलील है। किसी मजहब पे कोई हाल नहीं है, है तो हमारे ऊपर डिस्कस हमारी तमाम चीजों पर हमेशा होती है। अगर ये दीन अल्लाह की तरफ से और सच्चा दीन ना होता तो इतने एतराजात के बाद आज इसकी हवा उखड़ी होती, कोई नाम लेने वाला ना। लेकिन चारों तरफ से हमलों के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह ये दीन पूरी ताकत के साथ पनप ही नहीं रहा है, आगे भी बढ़ रहा है और लोग रोजाना दीन कबूल कर रहे हैं, उन मुल्कों में कर रहे हैं कि जहां इस मुल्क दीन को मिटाने की मेहनत कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अमेरिका में इस वक्त कुरान करीम को पढ़ा जाता है और सबसे ज्यादा इसके तराजम अंग्रेजी में वहां जो है पढ़े जा रहे हैं। जहां कुरान सोदी की गई है वही जो है कुरान सादी का माहौल पैदा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अल्लाह ताला दुश्मनों को यह बताना चाहते हैं कि जो मेहनतें तुम दीन हक को मिटाने की कर रहे हो तुम अपनी जगह करते रहो, वह मकरू वह मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, तुम अपने एतबार से मेहनत करो, बाकी दीन को पनपता हुआ और जिंदा रखने की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है, वो जिम्मेदारी पूरी होगी। मैं और आप नहीं करेंगे, हटा दिए जाएंगे, नई कौमें अल्लाह पैदा करके उनसे काम ले लेंगे। अल्लाह की जात देनिया है, वो हमारी मोहताज नहीं है। हमको मोहताज बन के चलना पड़ेगा तो ट्रैक में रखा जाएगा, वरना नेटवर्क से बाल उठा के फेंक देंगे। ये आयत करीमा हमें बहुत कुछ सबक दे रही है। तो हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि हजरत ये हालात में हमारा क्या होगा, तो हजरत ने एक मिसाल दी। फरमाया कि चंद बकरों को एक पहाड़ के ऊपर गुस्सा आया, ये पहाड़ हमारी राह में रुकावट है, लिहाजा ये पहाड़ को हटाया जाए। मीटिंग हो गई, मशवरा हुआ, आलमी पैमाने पर बकरे जमा हुए, उन्होंने तय किया कि हमें अपनी राह से ये पहाड़ को किसी भी हालत में हटाना। पुरजोर आवाज में एक दूसरे की ताइद की गई और उसके बाद चंद बकरों को यह अमल सुपुर्द किया गया कि यह पहाड़ को यहां से हटाने का अमल शुरू किया गया। एड़ी चोटी का जोर उन्होंने लगा दिया और अपने सींगों से खोदना शुरू किया पहाड़ को, लेकिन आधा एक घंटे की मेहनत के बाद वो बकरे सब आराम फरमा हो गए पहाड़ के दामन में। पहाड़ के दामन ने उनको भी जगा दे दी, क्या ये तशरीफ रखिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, तुमने मुझे मिटाने की कोशिश की लेकिन मेरी दामन में आपके लिए जगह है। فرماتے ہیں کہ پہاڑ کھودنے والے بکروں کا جو انجام ہوا اس کو کوئی بھی سمجھ سکتا ہے. پہاڑ تو مسکرا رہا تھا اتنے زخم کھا کے بھی. فرماتے ہیں یہ دین کی مثال پہاڑ کی طرح ہے, اور جو حالات ہیں وہ حالات بکروں کی طرح ہیں. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے ساتھ چمٹے اور سمٹے ہوئے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرنے والے نے سوال کیا تھا کہ حضرت یہ آسمان جو ہے کمان بن جائے اور حالات تیر بن جائیں, آسمان کمان بن جائے اور حالات تیر بن جائیں, اور یہ تیر خود جو ہے اللہ چلا رہے ہوں تو بندوں کے لیے امن کی جگہ کہاں ہے؟ کوئی اوپر ہو اور نیچے والے پر تیر برسا رہا ہو تو نیچے والے کے لیے بچنے کی کیا جگہ رہ جاتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے سب سے اچھی جگہ یہ ہے کہ وہ تیر چلانے والے کے دامن میں پناہ حاصل کر لے. اگر اس کے پہلو میں چلا جائے گا تو اس کی حفاظت ہو جائے گی. آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حفاظت ہو تو حفاظت کے لیے دنیا جو طریقے بتا رہی ہے اور جو دستور بتا رہی ہے اور جو بچنے کے حربے بتا رہی ہے یہ کوئی بھی طریقہ نہیں ہے. اصل طریقہ یہ ہے کہ کتاب اللہ کی روشنی میں اور سرکار کے طریقوں کی سائے میں اگر ہماری زندگی گزرے گی تو انشاءاللہ دین تو پنپتا رہے گا لیکن ہم لوگ اور ہماری نسلیں بچ جائیں گی. ایک واقعے پر آج کی بات ختم کریں. تاریخ کے مطالعے سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ جب جب ہم پر دباؤ پڑا ہے تو ہم بیدار ہوئے ہیں, جب جب پریشرائز کیے گئے ہم لوگ تب تک اللہ نے بیداری ہمیں عطا فرمائی, ورنہ خواب غفلت ہماری مشہور ہے. کرفیو سے پہلے مسجد میں آنے کی ہر ایک کو پرمیشن تھی تو جماعت خانہ خالی تھا. جب کرفیو لگا کیوں کہا کہ بس جہاں دیکھو وہاں گولی مارو, مسجد میں آ کے دیکھا تو جماعت خانہ فل ہے, گولیوں کے سائے میں جماعت خانہ فل ہو رہا ہے. اور جہاں کرفیو ختم ہوا تو مسجد میں کرفیو شروع ہوا. تو کیا چاہتے ہیں ہم لوگ کے حالات ہمارے اوپر آئے تو ہم کام کریں؟ دوستو بات یہ ہے آج ہمیں غفلت سے بیدار ہونے کا وقت آ چکا ہے. اب ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کسی دجال کے آنے کا, قیامت کے آنے کا, کوئی بڑے عذاب کے آنے کا, کوئی بڑے دشمنوں کے آنے کا جو ہمیں اور ہمارے ایمان کو اچک کے لے جائے؟ ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ جب جب دبایا گیا ہے ہمیں, اللہ نے ہمیں جو ہے اس وقت بیداری کے ساتھ دوبارہ جو ہے زندگی عطا فرمائی. شاید کیا کہتا ہے, امت مرحوم کا جب تک تھا قرآن پر عمل ساری دنیا میں ان کی شوکت رہی ضرب المثل, چھوڑ کر قرآن کو مومن حق سے بیگانہ ہوا, دین بھی رسوا کیا آپ بھی رسوا ہوا. تو قرآن کریم کو سینے سے لگا کر اس کے فرامین پر عمل کر کے اور اس کے احکام پر زندگی گزار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو چیزیں بتلائی اور نہایت عمدہ بتائی, اور اس سے بہتر نہیں بتا سکتے جو سرکار نے بتائی, کہ ہمارے بچنے کا اور ہماری پریشانیوں کا حل کہاں ہے, ہم تلاش کہاں کر رہے ہیں اور حل ہے کہاں. جہاں ہم تلاش کرتے ہیں حل وہاں تو ہے پریشانیاں, اور جہاں حل موجود ہے وہاں گزر بھی نہیں ہوتا ہمارا اگر وہ گڑ ہمیں ہاتھ آ جائے جو سرکار نے بتایا. کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ وسنتی. मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, शबे दीजूर की तरह और घटाटों अंधेरियों की तरह तुम्हारे ऊपर हालात के बादल जब मंडरा रहे हो ना, तो तुम्हें इससे पनाह देने के लिए दो चीजें देके जाता हूं। तुम गुमराही में भटक नहीं जाओगे, याद रहे कि किसी को अपने दीन पर चलने का घमंड नहीं होना चाहिए, वरना हमने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो दूसरों को दाढ़ी की तलकीन करते थे लेकिन वो नाई के यहां बैठकर जो है खुद अपनी दाढ़ी मुड़वाने लगे। इसलिए दुआ किया करो, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना वा हब लना मिन लदुन्का रहमा इन्नका अन्तल वहाब। और फाजिले देवबंद थे अनवर साबरी, उन्होंने बहुत अच्छा उम्मत के हाल का नक्शा खींचा है। वो बहुत अच्छी बात कहते हैं, मुझे किसी ने एसएमएस दिया था, उसने मिसरा लिखा था कि इस मिसरे पर गौर करें तो हमारे जो अखबार है उसका जो है वो कच्चा चिट्ठा निकलेगा। वो तस्वीर लाखों में बिक गई, वो तस्वीर लाखों में बिक गई जिसमें बच्चा रोटी के बगैर उदास था। उस तस्वीर को लोगों ने लाखों में खरीदा है, जिसमें बच्चे की तस्वीर बताई है कि वो रोटी ना मिलने की वजह से उदास बैठा है, उसको लाखों में लोगों ने खरीदा है, लेकिन ये बच्चे को रोटी देने वाला कोई, ये हालात। तो क्या कहते हैं, ईमान वालों की शान यह है कि उनके सामने हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी रहे। क्या कहते हैं, मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखा सीने में, जी ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। आज जब किसी जगह सुनने को मिलता है कोई बयान, तो लोग जो है कोई सियासी लीडरों की तकरीर करते हैं। मैंने कहा तुम्हारे सामने एक मुसलमान होने के नाते से सरकार की जिंदगी है, इसलिए हमेशा जब बात शुरू करें तो सरकार मदीना से शुरू करेंगे बात। ईमान वाला कुरान करीम की आयत से शुरू करेगा बात। क्या नहीं है कुरान करीम में 300 उलूम पर बहस है, अगर करने वाला करना चाहता हो तो उसको दूसरी जगह कोई चक्कर काटने की जरूरत नहीं, उसके पास तो गंजीने हैं, उसके पास खजाने। फरमाते तकबीर तो अभी होती है मस्जिद की फिजा में, ऐ अनवर जिस जर्ब से दिल मिल जाते थे वो जर्ब लगाना भूल गए। अल्लाह ताला हमें वो भूली हुई हमारी जो तारीख है ना हमें याद दिला दे। आज हमारे बच्चों की कमजोरियां बल्कि बड़ों की कमजोरियां ये है कि हम क्या हैं वो तारीख खुद हम भूल चुके हैं, हमारे सामने वो तारीख नहीं है कि वो फाका कश और वो बोरियों पर फटी फूटी चटाइयों पर बैठने वालों ने जो कारनामे अंजाम दिए, वो कारनामे क्या। इसलिए बेचारे शायर ने सीधी सादी बात कही कि क्यों चांद में खोए वो और उलझे वो सितारों में, और आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। और क्या कहते हैं, उन्हीं की तजल्ली इन चांद सितारों में, उन्हीं के पसीने की उन्होंने सहाबाए किराम की सीरत को बयान किया है।
तैबा के फकीरों की ठोकर में समाना ले, तारीख बताती है यह राज इशारों में।
तो टूटी हुई चटाइयों पर बैठकर आधी दुनिया को फतह किया, तो आज जबकि पूरे आलम में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हैं, कमी किस बात की है। सरकार फरमाते हैं तरक्तु फीकुम अम्रैन लन तदिलो मा तमस्सक्तुम बिहिमा। दो चीजों को मजबूती से थाम कर रखना, वो क्या है? फरमाते हैं किताबुल्लाह या काम पर अमल, इसकी तिलावतों से रात दिन अपने आप को सरशार रखना और इसके एक एक हर्फ से प्यार करना, क्योंकि इसके एक हर्फ में भी शक नहीं। इकबाल ने अपने फारसी शेर में इसको कहा है, हर्फे उरा रैब ने तब्दील ने आया अशर्मिंदे तावील ने, नौए इंसारा पयामे आखरी हामिले वो रहमतुल लिल आलमी। लिहाजा नजरें गैरों से हटाने की अब जरूरत है, अल्लाह के वादों पर नजरें जमाने की जरूरत है और अल्लाह के वादों पर यकीन के साथ अपनी जिंदगी को ढालने की जरूरत है। इंशाअल्लाह ये हालात जो है ना वो तो खुद ब खुद खत्म होंगे। इसलिए हर जमाने में ऐसी घंघोर घटाएं आती रही और अल्हम्दुलिल्लाह छटती रही, और उसके बाद जो है फिर हमारा एक बार सूरज जो है वो जगमगाया पूरी आबोताब के साथ। और शायर कहता है कि उठ के अब बज़्मे जहां का और भी अंदाज है। लोग कहते हैं हमारा टाइम पूरा हो गया, हमारी सदियां फिनिश हो गई, हमने बहुत काम किया, बहुत हुकूमत किया, खत्म हो गया। उठ के अब बज़्मे जहां का और भी अंदाज है और मशरिक व मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। Thank you.